साथ हैं, सीरीज प्रिपरेशन के मुताबिक हम उनसे पूछेंगे। सेकेंडली क्वेश्चंस प्लीज अपने रिलेट करिएगा साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए, ताकि हम क्वेश्चन मैक्सिमम ले सकें, रेपिटिशन ना हो, हमारे पास टाइम कम है, हम मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो लेने की कोशिश करेंगे। ये मिर्जा भाई बताइएगा कि हमारे 3-4 दिन हमने प्रैक्टिस की है, कैसा आपके प्लेयर्स जो हैं वो देख रहे हैं और आगे सीरीज को कैसा देख रहे हैं।
जी, अस्सलाम वालेकुम सबको। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो आई थिंक के बड़े अच्छे 4 दिन गुजरे हैं। बड़ी ज़बरदस्त प्रैक्टिस चल रही है और यहाँ की कंडीशंस के मुताबिक जो जो चीज़ें हम समझ रहे थे कि हमने टॉप अप करनी है इन टर्म्स ऑफ आवर बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग, फिर उसके मुताबिक हमारी जो बैटिंग है तो फील्डिंग स्पेशली बड़ा इम्पोर्टेंट था हमारे लिए पिछली सीरीज को देखते हुए कि हमने उसमें मैक्सिमम अपनी एफर्ट्स करनी है, इम्प्रूवमेंट लेके आनी है। तो आई थिंक जो भी हम उसमें हार्ड वर्क कर सकते थे एवरी डे ऑलमोस्ट एक डेडिकेटेड सेशन 40 से 50 मिनट का किया है, और उसके अलावा स्पेशलिस्ट पोजीशंस की अलग से फील्डिंग की है, लड़कों ने इंटरेस्ट से की है। होपफुली इंशाल्लाह कि उसको हम मैचेस में उस तरीके से करेंगे, बेहतरी लाएंगे उसमें। ओवरऑल वी आर रेडी आई थिंक एंड लुकिंग फॉरवर्ड के जल्दी ये मैच शुरू हो और होम सीरीज होम उस पे हम अच्छी परफॉर्मेंस दें और अपना कॉन्फिडेंस लेवल वापस लेके।
जी, हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ जाएंगे। जी, माजिद भट्टी, रशीद शकूर, खालिद खान एंड शाहिद हाशमी।
जी अस्सलाम वालेकुम मिसबा।
जी वालेकुम अस्सलाम।
अच्छा मिसबा, सीरीज तो जाहिर परसों से शुरू हो रही है, लेकिन सीरीज से पहले बहुत ज्यादा कोचिंग स्टाफ के बारे में भी स्पेकुलेशंस होती रही। कभी किसी ने कहा कि ये मेक एंड ब्रेक है हेड कोच के लिए, बॉलिंग कोच के लिए, क्रिकेट कमेटी ने फिर रिव्यू करना है इस सीरीज के बाद। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या आपका भी कोई अपना टारगेट है कि आप चाहते हैं कि भाई टीम अगर यहाँ जाएगी तो मैं 3 साल पूरे करूंगा, या अगर 3 साल से पहले अगर टीम उस गोल को अचीव नहीं कर सकी तो बीच में आप भी खुदा हाफिज कहना चाहेंगे, या इस वक्त जितना कुछ चल रहा है आप सबसे सब हर चीज से सेटिस्फाई हैं?
देखिए, सेटिस्फाइड नहीं है परफॉर्मेंस से, ऑब्वियसली वांट टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, और ऑब्वियसली बाकी सारी चीज़ें अभी साइड पे रखी हुई हैं। फिलहाल पूरा फोकस इस सीरीज पे है, इस सीरीज की परफॉर्मेंस पे है, और कोशिश करेंगे कि जो हमने प्रीवियसली मिस्टेक्स की हैं, जहाँ कमियाँ हैं, उनको हम पूरा करें। अपनी तरफ से पूरा पूरी एफर्ट कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर से बेहतर करने की, एंड आई थिंक दिस इज वेयर वी आर फोकसिंग एट द मोमेंट। आगे पीछे उसको नहीं सोच रहे कि आगे क्या होना और क्या नहीं होना।
अस्सलाम वालेकुम मिसबा।
जी वालेकुम अस्सलाम।
मिसबा, क्या आप समझते हैं कि मतलब एज ए हेड कोच जो आपका एक फ्यूचर है वो इस सीरीज के नतीजे पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा?
लेकिन शकूर भाई, कोई इस चीज पे मैटर नहीं करता। सारी जिंदगी हमने अंडर प्रेशर क्रिकेट खेली है एंड यू हैव टू परफॉर्म। इधर कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई श्योरिटी सिक्योरिटी होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो सीखी है वो यही है कि जॉब इन हैंड, उस मोमेंट में जो चीज आपके पास है उसको आप अच्छे तरीके से उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निपटाने की कोशिश करें। तो बस फोकस यही है, आगे क्या होना है क्या नहीं होना उसके बारे में ना सोच रहे हैं और ना ही कुछ देख रहे हैं।
थैंक यू।
जी खालिद भाई, अंजन, शाहिद हाशमी।
मिर्जा अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम।
मिर्जा, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप का टेन्योर टीम के ऊपर उतार चढ़ाव होता रहे, वो तो बिसाइड द पॉइंट, लेकिन अभी जो आपकी टीम में नए लड़कों का के सिलेक्शन हुई है, अभी तो खत्म हो रहा है ऐलान होने, फिर यूसुफ का और सकलैन का कैंप में आना, ये आपकी एज हेड कोच कितना आप लोग आपके लिए प्लस पॉइंट है ये?
जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में इसमें कोई, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा स्पेकुलेशंस हैं और लोगों की राय है कि पता नहीं ये बोर्ड ने शायद ऐसा कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारी बकायदा बाहमी मुशावरत से हुआ है सारा कुछ। उसका मेन मकसद यही था, एक तो सकलैन भाई का आने का मकसद ये था कि स्पिनर्स हमारे, क्योंकि यहाँ की कंडीशंस में स्पिनर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो हम चाह रहे थे कि जरा आके वो नए स्पिनर्स जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करें उनके साथ थोड़ा सा काम करें। और दूसरी जो मेन मकसद यूसुफ भाई के आने का था वो ये था कि हमारी कोऑर्डिनेशन अच्छी हो। लीड यूनुस खान ही कर रहे हैं यहाँ पे बैट्समैनों को सारा कुछ, और हम आपस में कोचेस कम्युनिकेट कर रहे हैं ताकि हमें पता हो कि कौन सा लड़का क्या कर रहा है, उसका डाटा सारा इकट्ठा कर रहे हैं, उसकी वीडियोस जैसे वो खेल रहा है। लोगों को शायद इम्प्रेशन है कि 3 बंदे बता रहे होंगे, बैट्समैन कंफ्यूज हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यूनुस खान कम्युनिकेट कर रहे हैं प्लेयर्स के साथ जो भी है, बाकी हम लोग बिल्कुल, हम सिर्फ तीन कोच आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं ताकि जब ये लोग बाद में सीरीज के एनएचपीसी में जाएं तो इन सारे कोचेस को पता हो इनके साथ किस किस एरिया में काम करना है, तो ये बड़ा क्लियर है। और दूसरा जो मकसद इनके आने का था वो, क्योंकि इन्हीं कोचेस ने जाके T20 की प्रिपरेशन करानी है वहां पे, हम लोग यहाँ टेस्ट टीम के साथ बिजी होंगे तो वो भी हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं कि कैसे वहां जाके इनको तैयार कराना है T20।
मिसबा अस्सलाम वालेकुम। शाहिद
जी वालेकुम अस्सलाम।
मिसबा, हमारा दूसरी टीमों के मुकाबले में होम रिकॉर्ड अच्छा खासा है, ऑस्ट्रेलिया से भी हम जीते हुए, इंग्लैंड से भी जीते हुए, लेकिन जनूबी अफ्रीका से हम टोटल एक टेस्ट मैच जीते हैं, वहां भी जाकर हम कभी सीरीज नहीं जीते। इसकी वजह क्या ये है कि वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं या ज्यादा अच्छी टीम है उनकी?
आई थिंक स्पेशली मैं यूएई की बात करूंगा, जब हम लोग खेले हैं वहां पे तो स्पिनर्स भी उनके पास अच्छे स्पिनर्स भी हैं, और उस टाइम पे जाहिर है एबी डिविलियर्स, हाशिम आमला, जैक कैलिस बड़े जबरदस्त प्लेयर थे स्पिन को खेलने वाले, तो उस वजह से भी आई थिंक के वो हमेशा कंपेटिटिव रहे हैं। और अपनी कंडीशंस में तो उनकी जो फास्ट बॉलिंग है, बाउंसी कंडीशन साउथ अफ्रीका में वो उनके किसी भी एशियन टीम की बड़ी टफ साइड है। होपफुली दिस इज स्लाइटली अ डिफरेंट साउथ अफ्रीकन साइड, और कोशिश करेंगे कि इसको हम बेहतर करें रिकॉर्ड को। आई थिंक ओवरऑल अच्छी टीम है साउथ अफ्रीका की, फास्ट बॉलर रिवर्स स्विंग भी अच्छा यूटिलाइज करते हैं वो इस चीज को, और उनकी मोस्टली लड़के अब आईपीएल में खेलते हैं, स्पिनर्स को भी वो बेहतर खेलना शुरू हो गए, इसलिए आई थिंक रिकॉर्ड थोड़ा सा इस तरह है, बट आई थिंक दिस इज द राइट टाइम, हमें अच्छी क्रिकेट खेल के ये हमारे पास मौका है कि हम इस सीरीज में कमबैक करें।
जी नेक्स्ट फैजान महमूद।
थैंक यू रजा। मिस्टर भाई 13 साल बाद 14 साल बाद तकरीबन साउथ अफ्रीका यहाँ पे खेल रही है, देखा जाए तो रेड बॉल का किसी को पाकिस्तान की कंडीशंस का एक्सपीरियंस नहीं है, पाफ थोड़े से व्हाइट बॉल ऑल्दो यहाँ खेले हुए, किस हद तक पाकिस्तान चाह रहा है कि इस जो उनकी अननोइंगनेस है कंडीशंस के वजह से उसको एक्सप्लॉइट करे पाकिस्तानी टीम?
जाहिर है जी, इन कंडीशंस आप हमेशा कोशिश करते हैं कि आप, सबसे जो बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ पे हमारी अभी रिसेंटली कराची में क्रिकेट हो रही थी और काफी आइडिया है सबको कि यहाँ पे किस तरह की पिच, किस तरह की कंडीशंस रही है, ऑब्वियसली अच्छा मौका है हमारे पास, बट आई थिंक एट द सेम टाइम ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि सर्टेन टाइम्स पे ये बैटिंग कंडीशंस की तरफ ज़्यादा चली जाती हैं पाकिस्तान की कंडीशंस, तो इसमें इसीलिए मेरे ख्याल में दूसरी टीमों के भी थोड़ा सा एडवांटेज रहता है, बट हमें बड़ी, हमारे पास अच्छा मौका है कि हम जो अभी प्रीवियसली, क्योंकि यहाँ क्रिकेट बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक भी खेली है और अपनी होम कंडीशंस को जानते हैं, प्रीवियस जो टेस्ट मैच हम यहाँ पे खेले हैं वो भी एक हमारे लिए कॉन्फिडेंस हमारा उससे भी थोड़ा सा बेहतर होगा जो श्रीलंका के अगेंस्ट खेले हैं, तो होपफुली इंशाल्लाह कि यहाँ हमारे पास चांस है, अच्छा चांस है, अच्छी क्रिकेट खेले तो हमारे पास मौका है जीतने।
अच्छा मिसबा, आप हो गए और यूसुफ हो गए, यूनुस हो गए, ये मोस्ट एक्सपीरियंस एक ट्राई का है टेस्ट का, आपने पाकिस्तानी बैट्समैन जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, दो तीन चीजें क्या पॉइंट आउट किए जिसके ऊपर आपने ज्यादा काम किए बैट्समैनों के हवाले से?
देखिए बात ये है कि अभी तक जो हम सीरीज खेल के आए हैं, अब टोटली डिफरेंट कंडीशंस हैं, न्यूजीलैंड टोटली डिफरेंट कंडीशन थी, वहां पे हमें वो जो स्विंग है या बाउंस था पेस वो वहां पे प्रॉब्लम हो रही, तो आई थिंक यहाँ पे टोटली एक डिफरेंट सिनेरियो, यहाँ पे आपके लिए मोड ऑफ डिसमिसल्स डिफरेंट हैं, आपको बॉलिंग डिफरेंट होनी है, स्लिप से ज्यादा आपको विकेट्स वाले बॉलों को आपने इम्पोर्टेंस देनी है कि उसको कैसे खेलना है, लेग बिफोर बोल ज्यादा गेम में होते हैं और फिर स्पिन बॉलिंग ज्यादा गेम में होती है, तो कोशिश की है कि उसको साइड पे रखें जो न्यूजीलैंड में हुआ, यहाँ की कंडीशंस के मुताबिक तैयारी की जाए कि विकेट टू विकेट जो बॉलिंग होनी है उसको कैसे हमने खेलना है, फिर स्पिनर के अगेंस्ट हमने स्कोरिंग ऑप्शंस हमारी क्या हैं, किस तरीके से हमने रोटेट करना है, किस तरीके से रन्स करने हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। यहाँ पे रन्स करने भी डिफरेंट हैं वहां से, और यहाँ पे जो लाइन ऑफ अटैक है बॉलर्स की वो भी टोटली डिफरेंट है। तो कोशिश किया यहाँ की कंडीशंस के मुताबिक हम तैयारी करें, स्टंप्स वाले बॉल, रिवर्स स्विंग में जो विकेटों में बॉल आएगा उसको कैसे हमने खेलना है, स्पिन को कैसे हमने टैकल करना है, और स्कोरिंग ऑप्शन हमारी क्या, तो ज्यादा इसमें तैयारी और फोकस पूरा किया इस कैंप के दौरान।
जी शुएब, धन्यवाद।
अस्सलाम वालेकुम मिसबा भाई, उम्मीद है कि
शुएब आवाज नहीं है, बाद आप प्लीज क्वेश्चन करिएगा।
अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मिसबा भाई?
जी जी आवाज आ रही है
जी। मैं कह रहा हूँ थ्रो डाउन कर करके आपका हाथ तो काफी थक गया होगा, लेकिन चलें हौसले बुलंद है। सवाल मेरा ये था कि जनूबी अफ्रीका को हमने बड़ा जो है वो कोविड का क्वारंटाइन जो था उसमें रिलैक्सेशन दी कि एक ही दिन के बाद वो बाहर आ गए, और उसके बाद से मुसलसल वो अपने सेशंस कर रहे हैं। आप लोग को न्यूजीलैंड में टफ पीरियड गुजारना पड़ा, तो इसका जो है वो अफ्रीका को यकीनी तौर पर एडवांटेज होगा, इस बारे में बता दीजिएगा। और फिर हमने भी रिप्लाई में जनूबी अफ्रीका जाना है, तो आप भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान जब अफ्रीका जाए या पाकिस्तान जब इंग्लैंड जाए, ऑल दो वैक्सीन अभी आ गई है लेकिन एक वक्त लगेगा, तो आप लोग को भी क्वारंटाइन में इतना ही नरम पीरियड मिले ताकि तैयारियां बेहतर हों और आप जाके ओपोनेंट्स को तगड़े तरीके से निमट सकें।
आई थिंक इम्पोर्टेंट है, बड़ा इम्पोर्टेंट है ये। एक दो दिन तो आप निकाल लेते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आप दो दो वीक आप प्रैक्टिस ना कर पाए तो वो एक डिफरेंट है सिनेरियो, बड़ा डिफिकल्ट सिनेरियो। तो होपफुली के आगे वैक्सीन भी आ जाएगी और ये चीजें थोड़ी सी बेहतर हो जाए, तो नो डाउट बड़ा एडवांटेज है आपको। अगर फौरन आप प्रैक्टिस करना शुरू हो जाते हैं तो एटलीस्ट आप बाहर नहीं भी जा सकते, कुछ और नहीं भी कर सकते, जिस मकसद के लिए आप आए होते हैं क्रिकेट ट्रेनिंग उस पे आप फोकस करते हैं, तो मेंटली भी आप पे वो ज्यादा जो है वो इफेक्ट नहीं करता। मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका के लिए बड़ा अच्छा है, क्रिकेट के लिए भी अच्छा है, और होपफुली इनकमिंग जो भी हमारी सीरीज होंगी उसमें हमें भी ये अगर आसानी मिलेगी तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो।
जी बात बाद आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज जी अली एंड देन बदी।
आवाज आ रही है?
जी बात आ रही है, प्लीज।
जी जी अस्सलाम वालेकुम मिसबा भाई।
जी वालेकुम अस्सलाम
मिसबा भाई। नो डाउट बाबर आजम वर्ल्ड क्लास खिलाड़ियों में उनका शुमार होता है, कप्तानी भी जो है उनका खासा तजुर्बा है, लेकिन आप ज्यादा समझते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा कप्तानी जो है बड़ा चैलेंज होता है, तो ये पहला तजुर्बा होगा बाबर आजम के लिए कि पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के लिए वो टेस्ट कप्तानी करेंगे, तो आप क्योंकि आपने भी काफी अच्छी कप्तानी की है, काफी अच्छे आप बैट्समैन भी रहे हैं, काफी अच्छा तजुर्बा है, तो आपने कोई उनको टिप्स दी हैं कि टेस्ट क्रिकेट उनकी शुरू हो रही है कप्तानी के हवाले से, तो क्या क्या उस किस मैदान में उतरेंगे किस हिसाब से?
देखिए इसी तरीके से इंसान सीखता है, हम भी जब शुरू हुए कप्तानी शुरू की थी तो जाहिर है जीरो से शुरू करता है हर कोई, कहीं ना कहीं से आपने स्टार्ट करना, और आई थिंक जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि पिछले हम जो यहाँ पे सिनेरियो प्रैक्टिस भी की तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी बॉलर्स के साथ, मेरे साथ, कोचेस के साथ जो डिस्कशन कि किस तरीके से हमने हर बॉलर के प्लान को लेके चलना है, क्या क्या प्लान है, किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करना, तो कोशिश की है ताकि मैचेस से पहले एटलीस्ट हमारी वो तैयारी हो जाए कि हमारे माइंड में हो कि हमारे हमने कैसे कैसे जाना है, हर बॉलर का प्लान कैसे कैसे एग्जीक्यूट करना है, फील्ड प्लान्स क्या होंगे, यही आप लोग कर सकते हैं। बाकी तो जाहिर है कोशिश हमारी यही होगी कि बाबर अंदर जाए फ्री माइंड के साथ जाए, और जो मेरे ख्याल में एक समझदार क्रिकेटर है, जो भी बैट्समैन इस लेवल पे इस तरह रन्स करता है, आई थिंक क्रिकेट को काफ़ी हद तक वो समझता है कि बैट्समैन का माइंड क्या है, कैसे है, मैंने उसको कौन सी बॉलिंग करानी है, होपफुली उसको फ्री हैंड भी आई थिंक देना चाहिए हमें, کہ جا کے وہ اپنے جو وہ سمجھتا ہے اس ٹائم پہ کہ کیسے لے کے چلنا ہے, کیسے اٹیک کرنا ہے, کیسے آگے اندر ٹیم کو کیسے لے کے چلنا ہے. ہوپ فلی ان شاء اللہ ایسے ہی وہ سیکھے گا اور زیادہ بہتری بھی آئے گی اس کی کپتانی کے اندر.
جی زبیر نذیر اینڈ دین بدی.
جی میرے پاس کوشچن یہ ہے آپ سے کہ کراچی کی ویکٹ کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اسٹریٹجی ہوگی, کیونکہ ساؤتھ ایشیا بھی بڑا ڈیپلی آبزرو کر رہا ہے, ان کے پاس بھی جو ٹیم مینجمنٹ ہے بڑی ایکسپیرینسڈ ہے, تو کیا کہتے ہیں ریگارڈنگ دس؟ تھینک یو.
جی میرے خیال میں ان کو بھی آئیڈیا ہے اور ہمیں بھی آئیڈیا ہے, اتنی زیادہ کرکٹ ابھی ڈومیسٹک وی نو دا کنڈیشنز کے یہاں پہ مور اور لیس اسی ٹائپ کی پچ ہوتی ہے جو ہمیں پورے سیزن میں دیکھنے کو ملی ہے, کوئی اتنی زیادہ آپ اس کو ڈفرینٹ نہیں بنا سکتے کہ بالکل ہی جو آپ کو نظر آ رہا تھا پیچھے پورے سیزن میں اس سے کوئی بہت زیادہ ڈفرینٹ پچ ہوگی. تو آئی تھنک ان کی بھی ان کو بھی آئیڈیا ہے, کراچی میں انہوں نے کرکٹ پہلے کھیلی بھی ہے اور ہمیں بھی جو نظر آ رہا ہے اور جو ہم نے دیکھا ابھی تک میچ میں اس وقت کافی حد تک کلیئر ہیں اس حوالے سے کہ کیا ہم نے جانا ہے, کیسے کیسا کمبینیشن ہے ہمارا. تو اٹ آل ڈپینڈس, ظاہر ہے جی آپ اسٹریٹجی بناتے ہیں, کنڈیشنس کو ریڈ کرتے ہیں, بٹ سب سے امپورٹنٹ ہے ایگزیکیوشن. آئی تھنک فوکس سارا ایگزیکیوشن پہ, کیسے ہم نے ایگزیکیوٹ کرنا.
جی بدی.
جی
میرے بھائی
سوال میرا یہ ہے کہ انگلینڈ سے ہم سیریز آ رہے ہیں, نیوزی لینڈ سے سیریز آ رہے ہیں, اس کے بعد ہم ہماری ہوم سیریز ہے, ایز اے ہیڈ کوچ مصباح الحق آپ پر کتنا دباؤ ہوگا, کیونکہ بہت ساری تنقید آپ پہ ہوتی رہی ہے اور آپ اس کا جو ہے وہ اس کا جواب بھی دیتے رہے کہ واقعی تنقید بنتی ہے کیونکہ پرفارمنس ایسی تھی, تو آپ پر اس سیریز میں کتنا دباؤ ہوگا, خاص طور پر اگر خدا نخواستہ ریزلٹ اگر انگلینڈ اور ویسٹ اپنا نیوزی لینڈ جیسے آ جاتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو آپ کہاں ریٹ کر رہے ہیں, اور دوسرا کیا اس فائنل 11 میں باتیں ہو رہی ہیں کہ مصباح الحق کا مشورہ شامل نہیں ہوگا کپتان کے ساتھ, کچھ ایسا ہے؟
میرے خیال میں مل کے فیصلہ کریں گے, یہ ساری ایسی ریمرز ہیں اور آبویسلی جو پلیئنگ ہمارے جو پلیئر ہیں اور مینجمنٹ ہے, آئی تھنک یہ پوری ایک ٹیم ہے, ایسے نہیں ہے کہ کپتان کچھ الگ ہے, پلیئرز الگ ہیں اور میں الگ ہوں یا کوچنگ اسٹاف الگ ہے. آئی تھنک یہ تو ایک یونانیمس آپ کا ڈیسیجن ہوتا ہے, آپ کافی ڈبیٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور پھر آپ انالائز کر کے چیزوں کو آپ ایک بیسٹ کمبینیشن آپ اندر لے کے جاتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ میں اس سے آؤٹ ہوں یا کپتان اس سے آؤٹ ہے. آئی تھنک مل کے بنائیں گے ان شاء اللہ ٹیم. باقی جو پرفارمنس کی بات ہے سیریز, پریشر آبویسلی ٹاپ لیول پہ آپ جب کوچنگ کریں, بیٹنگ کریں, بولر ہوں, فیلڈر ہوں, آپ کو پریشر تو آپ پہ ہوتا ہے اور آپ کو ڈیل کرنا ہوتا ہے, اٹس ناٹ سم تھنگ نیو. ریزلٹس کے بارے میں جی, ریزلٹ یہ آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا, جو چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اس کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہیے. کنٹرول میں ہمارے ایفرٹ ہے اس سیریز کی, اپنا بیسٹ جو بیسٹ سے بیسٹ کر سکتے ہیں, پریپریشن کے حوالے سے, کھیلنے میں جو ہم نے اسٹریٹجیز بنانی ہے اس کے حوالے سے, اینڈ دین سی وٹ ایور دا ریزلٹس آر, اس کو آپ کو قبول کرنا پڑتا ہے, ظاہر ہے وہ آپ کے اختیار میں نہیں.
اوکے جی تھینک یو ویری مچ, بس ہم تھوڑی دیر میں ہم لیو کریں.